हम सबको योग तो लगाते आ रहे हैं, और भी ज्यादा अपने योग को गहन करने की, निरंतर करने की आवश्यकता है, जो हमारी ही सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं, बाबा ने अपनी मुरलियों में स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय की स्थितियां कैसी होंगी, चारों ओर कैसा हाहाकार होगा, भूकंप होंगे, विनाश ज्वाला भड़केगी, ये सारी स्थितियां होंगी, और इन सब में भी हम अचल अडोल रहकर पास विद ऑनर हों, यही हम सबका लक्ष्य है। बाप समान बनकर सारे विश्व का कल्याण करें, उद्धार करें, यही हम सबका ध्येय है, कर्तव्य यही है कि जो संसार के दीन हीन दुखी हम पर आश्रित हैं, उन सब की मदद करें, उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करें। तो अपने इस महान कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए एक ओर तो हमारी स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति, और साथ ही अब भविष्य में और क्या होने वाला है उसके लिए एक अच्छी तैयारी के साथ उसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब पता होता है कि क्या होने वाला है, पेपर क्या है, तो उसकी पूर्व तैयारी की जाती है, और यदि पूर्व तैयारी बहुत अच्छी है, उसका संपूर्ण ज्ञान है, तभी निश्चिंत रहकर, साक्षी रहकर, हल्के रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। और यही कारण है कि अब आगे क्या होने वाला है उसकी जानकारी और साथ ही उसकी हम तैयारी कैसे करें, उस पर ही ये सुंदर चर्चा केंद्रित है, जिस पर पिछली बार भी आप सब ने अपने प्रश्न भेजे थे, अब भी भेजे हैं। आइए पहले अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का और साथ ही सत्र की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन भ्राता जी।
शुक्रिया।
प्रथमतः तो एक बात आ रही है भ्राता जी सबसे पहले कि दादी गुलजार जी के जाने के बाद जैसे कि बहुत सारी ब्राह्मण आत्माओं का भी जाना हो रहा है और विश्व में एक ऐसी स्थिति दिख रही है कि बहुत सारे लोग अब जा रहे हैं, तो पहला प्रश्न ये है जो हमारे भाई बहनों की ओर से आया है कि क्या दादी गुलजार जी ने जाके मुक्ति धाम का गेट खोल दिया है जो अब सभी जाने लगे हैं?
मुक्ति धाम का गेट अभी खुलेगा नहीं क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है। जब आखिरी आत्मा ऊपर से नीचे उतरेगी तब फर्स्ट आत्मा नीचे से ऊपर जाएगी, यानी गेट खोलने वाले ब्रह्मा बाबा ही होंगे। लेकिन ये जो बहुत आत्माएं जा रही हैं, इनका भी कुछ अच्छा पार्ट है। जो ब्राह्मणों में से भी जा रहे वो एडवांस पार्टी में भिन्न भिन्न तरह के पार्ट बजाएंगे और जो संसार में जा रहे उनके भी पुनर्जन्म होंगे बहुतों के, और वो अपना अपना पार्ट बजाएंगे। तो अभी परम धाम का गेट खुलने का समय नहीं आया है।
दादा जी, बाबा ने कहा है कि जैसे संसार में त्राही त्राही कर लोग शरीर छोड़ेंगे और तुम बच्चे बैठे बैठे खुशी से अपना शरीर छोड़ेंगे, लेकिन अभी इस काल में जो देखने में आ रहा है, चाहे हमारी टीचर्स बहनें हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, कम उम्र में भी और थोड़ी तकलीफ के साथ भी जा रही हैं, तो एक प्रश्न उठता है कि बाबा ने जो कहा कि मेरे बच्चे तो नैनों में बैठ के जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, तो वो स्थिति दिख नहीं रही।
नैनों में बैठकर वो जाएंगे जिन्होंने बाबा को अपने नैनों में समाया होगा। हर एक का क्या पुरुषार्थ रहा है जीवन भर, ये तो वो स्वयं जाने या उनके साथ ही जान सकते हैं। बाकी खुशी से स्वेच्छा से देह तो उनका ही छूटता है जो बहुत अच्छे योगी बन जाते हैं, जो संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं, पूरे तृप्त सब कुछ पा लिया शिव बाबा से। बाकी सबके क्या संस्कार रह गए हैं, कितने पाप कर्म रह गए हैं, उस अनुसार सबको कष्ट होता है। तो ये हरेक की फिलोसफी अलग अलग है
जी। लेकिन बाबा ने जो एक बात कही है, कई लगातार इसी से जुड़े हुए, क्योंकि अभी एक दौर ऐसा चल रहा है कि बाबा ने कहा है कि बाबा रक्षा करेंगे अपने बच्चों की, या ये बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बिल्ली के पुंगरे जैसे सुरक्षित थे, तो क्या बाबा इस समय सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं
बच्चों को? सुरक्षा प्रदान करने का अर्थ ये नहीं कि मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि जो भी चक्र संसार में चलेगा उसमें अनेक आत्माएं तो आएंगी ही। सुरक्षा प्रदान करने का अर्थ होता है कि मान लो बहुत बड़ा भूकंप होने लगा और बहुत दुर्गति की स्थिति हो गई, वहां से बाबा बचा लेगा। बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और सब बहने लगे, वहां से बाबा बचा लेगा। अब उसमें दोनों तरीके होते हैं, सहज उनका शरीर छूटे या वो सुरक्षित हो जाए, लेकिन बाबा की सुरक्षा उनको ही मिलेगी जिन्होंने अपनी प्योरिटी की सुरक्षा की है, जिन्होंने माया से अपनी सुरक्षा की है, जिन्होंने मर्यादाओं की रक्षा की है, जिन्होंने भगवान के यज्ञ की रक्षा की है। और यज्ञ में थोड़ा बहुत विघ्न डाला होगा तो बाबा की दृष्टि से वे दूर रहते हैं। तो कई सारे रहस्य हैं इनके पीछे। हमारी स्थिति क्या है, हमारी प्योरिटी क्या है, हमने अपने जीवन को सफल कितना किया है। अब जैसे मैं एक चीज कहता हूँ और सबने सुनी है वो बात कि तुम्हारा एक एक मिनट एक एक वर्ष के बराबर है, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है, उससे तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो। कितनों का ध्यान है इस बात पे? बहुत लोग अपने घंटों ऐसे ही वेस्ट करते हैं बिना मतलब की बातों में। तो जो इन मर्यादाओं पे नहीं चलता बाबा समय पर उनकी मदद नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जिन्होंने भगवान की मानी है तुरंत सुनवाई होती है। तो ये हरेक के अपने अपने पुरुषार्थ की बात है। कोई आत्माएं सहज जाएंगी, कोई कष्ट पाकर जाएंगी। अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा कष्ट पाकर जाते हुए, लेकिन और ऐसी भोली माताओं को देखा हमने। 18 जनवरी का दिन है, स्टेज पे बैठ के योग करा रही हैं और गई।
जी जी।
तो ये सबके कर्मों का खेल, किसकी आंतरिक स्थिति कैसी है, बड़े छोटे की इसमें बात नहीं, इसमें ये बात नहीं कौन 50 साल से ज्ञान में, कोई 5 साल से है, इसमें आंतरिक स्थिति, परमात्मा से सीधा नाता, उसके प्रति प्यार और स्वच्छता उसके प्रति कितनी है,
जी जी,
इन सब बातों पे डिपेंड करता है।
बिल्कुल, आपने एक माता जी की बात कही तो हमारे राजशेखर भाई है नीचे व्रता जी, उनकी भी माता जी ने ही ऐसे ही शरीर छोड़ा, रात को सोई और सुबह ऊपर पहुंच गए तो बाबा को कह रहे थे कि बाबा आज तो आप बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा योग तो मेरा कभी अमृत वेले नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम यहाँ आ गए हो, तो कितनी सुंदर अंतिम
स्थिति
जी जी। व्रता जी एक बात और आई है इस पे जो आप भी कहते रहे हैं, और प्रारंभ में जब पिछले वर्ष ये कोविड की महामारी चली थी, कि जो शाकाहारी होंगे और ब्रह्मचर्य में रहने वाले होंगे उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होगी, वो इससे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अब तो जो शाकाहारी हैं बाबा के बच्चे ब्रह्मचर्य में भी हैं तो वहां भी ये स्थिति आ रही है।
देखिए ये इम्यूनिटी का संबंध केवल इससे ही नहीं है, और बहुत सारी चीजें, मान लो उनके शरीर में कुछ ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसके होने के कारण ये कोविड बहुत प्रभावी हो गया, उनके लंग्स वीक हैं या उनको बुखार बहुत तेज हो गया है, तो कोई और कमजोरी भी शरीर में पहले से जो चली आ रही है, तो ये पवित्रता की और वेजिटेरियन फूड की जो इम्यूनिटी है ये संपूर्ण रूप से मदद नहीं करती, इसमें मनुष्य के कर्मों का खेल, उसका शरीर कैसा है, किसी का स्ट्रांग है, हम तो ऐसे ऐसे भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो बीमार भी हैं, जो कहते हैं श्री बाबा हमें बुला लो, उन पे कोविड का कोई असर नहीं, तो कोई अंदर में ऐसी स्ट्रेंथ है और किसी के में वो नहीं है, ये तो कोई नहीं जान सकता, तो ये केवल पवित्रता और वेजिटेरियन फूड पे डिपेंड नहीं करता, न जाने कितने फैक्टर काम कर रहे होंगे।
बिल्कुल, और साथ ही कर्मों की जो बात आप हमेशा कहते हैं वो भी एक फैक्टर हो सकता है। व्रता जी भले हमारे ब्राह्मण जा रहे हैं, कम उम्र में जा रहे हैं, तो एक बड़ा पेपर उनके परिवार वालों के लिए भी है, ये भी एक प्रश्न है, वो कैसे इस कठिन दौर में खुद को संभालें, और एक बात जो बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों को तो सारे संसार को सुख शांति देनी है, संभालना है, यदि हम ब्राह्मण ही फिर ऐसे डिस्टर्ब होंगे तो फिर संसार को कैसे संभालेंगे।
बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो हम सबके लिए एक वस्त्र उतारने की भांति है, आत्मा देह रूपी वस्त्र उतारती है, और जो लोग समर्पित हो गए हैं उनका नाता वास्तव में परिवारों से इस तरह का नहीं होना चाहिए कि परिवार वाले उनके दुख से अफेक्टेड हो जाएं, जिनका मोह बहुत ज्यादा रहता है उनकी स्थिति बिगड़ती है, इसलिए जाने वालों को बहुत आराम से गुड बाय करनी चाहिए, और वो अच्छा कार्य करेंगे, उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, भगवान की सेवाओं में अपना योगदान दिया है, इसलिए उसमें ज्यादा कुछ सोच विचार की जरूरत नहीं, और अब शिव बाबा को भी बहुत आत्माओं की जरूरत है ना, पवित्र आत्माओं की भी, ये संसार के लोग तो नहीं जान सकते, हम जानते हैं कि बाबा को आगे के कार्य कराने के लिए बहुत अच्छी आत्माओं की जरूरत भी है, मतलब अच्छे योगियों की भी, भले बाबा ने कह दिया योगियों को जल्दी नहीं जाना चाहिए, पर कईयों का पार्ट ऐसा है कि वो आगे जाके और महान कार्य करने वाले हैं, इसलिए हमें अपनी स्थिति को तो हर परिस्थिति में सुंदर बना के रखना ही चाहिए, परिस्थिति तो इससे भी ज्यादा बिगड़ेंगी ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो आ रहे हैं वायरस और सेकंड आया थर्ड, लोग कहते हैं कई आएंगे, तो स्थिति तो दयनीय होगी, अभी देखो सरकारें भी बहुत जोर लगा रही हैं पर संभल नहीं रही स्थिति, क्योंकि रोज संख्या इतनी आ रही है संक्रमित वालों की,
हमारे पास संसाधन
तो साधन भी बहुत बढ़ गए, लेकिन करें क्या, वो तो मृत्यु बहुत हो रही है, तो ऐसा होगा, हमें इसको स्वीकार करना ही होगा, और अपना पुरुषार्थ जितना अच्छा रखेंगे
जी
उतना अच्छा रहेंगे।
एक चीज जो आप पहले भी कहते आए प्रता जी कि जो निश्चय की परीक्षा है, यहाँ कई ब्राह्मणों में देखने में आ रही है कि ऐसी बीमारी हमें क्यों, बाबा ने तो कहा है कि वो हमारी रक्षा करेगा, तो ऐसे समय तो कम से कम हमारी रक्षा करनी चाहिए, और कम से कम कोविड से तो ब्राह्मणों को नहीं जाना चाहिए, तो ये एक निश्चय में कई स्थानों पे कईयों के प्रश्न आए हैं, वो हल्की सी एक हलचल की स्थिति
नहीं, हल्की नहीं, कईयों को तो बहुत अच्छी आ रही है, निश्चय की परीक्षा बहुत भारी आ रही है और निश्चय पहियों के पूरी तरह टूट रहे हैं कि बाबा अगर हमारा साथी होता तो ये क्यों होता, मेरा पति चला गया या मेरी पत्नी चली गई। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब तो बहुत कुछ होने वाला है। बाबा रक्षक है, बाबा मददगार है, इसका अर्थ ये नहीं कि जाएंगे नहीं। ये दुनिया तो खाली होनी है, हम जानते हैं सब जाएंगे। जैसे कबीर ने कहा ना, राम गयो रावण गयो जिनके बहु परिवार,
जी,
तो ये सारे बहु परिवार अब जाएंगे। इसलिए हमें तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना चाहिए। आत्माएं हैं सब, सबका अपना अपना पार्ट है और बाबा हो सकता है दूसरे रूप में उनको साथ दे रहा हो। हो सकता है उनको बहुत भारी पीड़ा होने वाली थी और बाबा ने बहुत जल्दी उनको ले लिया अपनी गोद में।
कोविड में जो पीड़ा दिखती है वो हमें दिखाई देता है कि वो श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तकलीफ में हैं, इतने समय से हैं और बाबा के इतने वर्षों से समर्पित बच्चे हैं, तो ये मन में एक प्रश्न उठता है।
नेचुरल उठता तो है, पर जब उनको वो श्वास का लग जाता है ना, फिर उनको श्वास में कठिनाई नहीं होती। एक्चुअली देखने वालों को कठिनाई होती है क्योंकि फूल रहे हैं, ऐसा लगता है वो गणेश जी का सूंड उनको ही लगा दिया गया है, और थोड़ी परेशानी। और हर एक अपनी अपनी स्थिति भी होती है, कोई किसी चीज को सहज भाव से लेते हैं और कोई किसी चीज में थोड़े परेशान भी होते हैं। देखो छोटा सा बुखार भी हो जाता है, कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और कई लोग आराम से उसको पार कर लेते हैं। तो ये अपनी जो सहन शक्ति है हर बीमारी को समाने की और सहने की, देखने की जो दृष्टिकोण है, ये सबका अलग अलग भी होता है। तो हमें बहुत धैर्यवत, बहुत सहनशील बनकर भी रहना है। शरीर में तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि भोजन भी हमें, भले हम शाकाहारी खा रहे हों, लेकिन उसमें भी न जाने क्या क्या डाला जा रहा है, इसलिए उसका भी निगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं मनुष्य के ऊपर आ सकता है।
जी जी, और अभी तो हवा के द्वारा भी फैलने की बात चल रही है, तो ये भी हम अपनी सेफ्टी रखें, ये इम्पोर्टेंट है, और अपनी स्थिति और बाबा पे विश्वास को कायम रखें। एक बात और है ब्रदर जी, जैसे एक बात आती है कि जो असमय शरीर छोड़ देते हैं वो भटक जाते हैं, तो क्या ब्राह्मण आत्माएं भी ऐसी भटक जाएंगी जैसे अन्य आत्माएं भटक रही
हैं? नहीं, ब्राह्मण आत्माएं नहीं भटकेंगी, क्योंकि इनके बहुत पुण्य हैं और पवित्र जीवन है और भगवान से सीधा कनेक्शन है, तो रोज ही उसके पास जाते हैं ना, रोज कई कई बार उसके पास जाते हैं, तो देह छोड़ते सीधे उसके पास जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों के भटकने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा तो कई अगले काम होने हैं सतयुग के लिए, इसलिए इनके जाने में कुछ राज हैं, जो और लोग जा रहे हैं उनके जाने में राज नहीं है, उनके पुनर्जन्म होने हैं। सभी भटकेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं कोई सभी भटक जाएंगे, किसी का वो समय ही आ गया था तो वो अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेंगे और ब्राह्मण भी पुनर्जन्म लेंगे, बहुत थोड़ी आत्माएं भटकेंगी।
जी जी जी, मतलब बाबा इनकी उस रूप में मदद करते हैं। कई बार हम देख, हमें जो दिखाई देता है वो नहीं होता, लेकिन बाबा की मदद शायद सूक्ष्म में, गुप्त में इतनी मिल रही हो कि वो उसके लिए धन्यवाद अर्पित
वो
कर रहे
प्रभु
होंगे।
की जो गति है ना हर कार्य की,
जी, जी,
मदद
जी,
करने की भी गति, उसको नीचे वाले नहीं समझ सकते। जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है उनको मृत्यु लेने में भी 100 दिन और लगते, और 100 दिन में उनकी सारी संपदा भी चली जाती, और 100 दिन में उनको अति कष्ट होता, परिवार वाले पीड़ित होते, लेकिन उनको 3 दिन में ही ले लिया
जी।
तो अनेक तरह की पीड़ाओं से उनको मुक्त कर दिया। ये प्रभु की जो गति है, जिसको भक्ति,
ये भी उनकी मदद है, जो हमारी समझ में शायद
ये उनकी मदद ही है, इसको समझ लेना चाहिए।
बिल्कुल, बाबा ने कहा है कि आगे चल के मौत का बाजार और गर्म होगा, नई नई और भी बीमारियां आएंगी, दवाई काम नहीं करेंगी, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये सारी सिचुएशंस तो दिख ही रही हैं। तो क्या अभी ये परिस्थितियां ऐसे ही चलेंगी या कुछ सुधार होगा?
ये ऐसे प्रश्न है, लोग सुन के डर जाते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा भी होगा क्या? एक्चुअली क्योंकि मनुष्य के कर्म बहुत विकर्म बन चुके हैं, ये इसको और कुछ न समझ के हम धर्मराज के द्वारा मिलने वाली सजाएं समझें। हर एक के कर्मों का फल उसे मिल रहा है। तो ये वायरस वाले ही बता रहे हैं कि 5-6 आने हैं ऐसे, और बहुत भयानक आने हैं, और दवाई और ऑक्सीजन की कमी तो अभी भी हमें दिखाई दे रही है। इसलिए जो ज्ञानी और योगी हैं उनको तो सहज भाव से अपने जीवन को बाबा के हाथों में सौंप देना चाहिए। बस तुम जैसे रखो, जिस विधि रखो, यहाँ रखो सेवा करेंगे, ऊपर बुलाओ तो भी तुम हमसे सेवा लोगे। बहुत निश्चिंत जीवन हमारा होना चाहिए और मृत्यु से भयभीत होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि बाबा तो आया ही है हमें मरने की ट्रेनिंग देने।
वो बोलते हैं मैं महाकाल हूँ, तुम्हें पता नहीं था तुमने महाकाल को बुलाया,
महाकाल को तुमने बुला लिया था। तो रोज हम देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करते हैं और ये सत्य है कि जो देह से न्यारा होने की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनको फाइनली देह छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होगा। भले बाहरी रूप से दिखाई दे रहा हो कि ऑक्सीजन का वो भी लगा दिया है और थोड़ी पीड़ा भी हो रही है, लेकिन अंदर में आत्मा शांत रहेगी।
बिल्कुल बिल्कुल रहते जी, समय को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब फेस टू फेस सेवा का मौका हमें नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में सेवा कैसे होगी? क्या सेवाएं सब अब ऑनलाइन ही चलने वाली हैं? ये इंटरनेट डिजिटल साधन कितना समय हमारा साथ देंगे?
हाँ देखिए, ये सब साधन भी, और बाबा ने पहले ही कह दिया था कि विज्ञान के ये इन्वेंशंस सब स्थापना के कार्य में काम आएंगे
जी।
तो जब से ये चला है 1.5 साल हो गया, ऑनलाइन सेवा तो बहुत हो गई और बहुत आत्माएं बाबा से जुड़ गई और उनमें से कुछ लोगों ने पवित्रता की धारणा भी अपना ली, कई लोग सवेरे उठ के योग भी कर रहे हैं। लेकिन अगला जो फेज है ना इस स्थापना का और संदेश आदि देने का, वो ये तो नहीं होगा कि दो दो चार चार को हम ज्ञान देंगे, लेकिन अब शुरू होगा साक्षात्कार का पाठ। एक है बाबा साक्षात्कार कराता है, दूसरा होगा हम में से जो श्रेष्ठ योगी बन गए, पवित्र आत्माएं बन गई, वो साक्षात साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगी। ये सब बाबा ने योग किया, उनके स्वरूप में लोगों को उनके इष्ट देव देवियां दिखाई देंगी, जैसे कहीं विष्णु दिखाई दे रहे हैं, कहीं दुर्गा माँ दिखाई दे रही है, कहीं अम्बा दिखाई दे रही है, कहीं महाकाली दिखाई दे रही है, ये सब दिखने लगेंगे जहाँ तहाँ। तो इससे जय जयकार होगी और बहुत आत्माएं खींचकर बाबा के पास आ जाएंगी, और जब वो खींचकर बाबा के पास आएंगी तो उन्हें ज्ञान दिया जाएगा, उन्हें योग सिखाया जाएगा, उनको मनुष्य देवता बनने की राह दिखाई जाएगी। तो सेवा का ये स्वरूप हो जाएगा।
बिल्कुल, मतलब हम साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं, तो अपनी स्थिति को ही हमें श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल साधन भी तो लगता है एक झटका आने के बाद संभव है कि ये भी हिलडुल जाए, तो अभी शायद ये काम आ रहे हैं, आगे चल के हमारी अवस्था ही काम में आएगी। पता जी, बाबा कहते हैं कि अंत समय में अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा और बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, डैम आदि फटेंगे, तो ये जो भयंकर दृश्य है कौन देख पाएगा इन्हें? बड़े मतलब खतरनाक खतरनाक से प्रश्न आए
तो देखने वाले तो रहेंगे ही नहीं ना, देख कर करेंगे भी क्या, तो
एक ये बाबा के महावाक्य,
एक मिनट का ही खेल होता है वो तो। देखो धरती जो टेढ़ी है 23.5 डिग्री पर, जब वो सीधी होगी तो सागर इधर का उधर हो जाएगा
जी।
लेकिन फिर भी सारा भारत और सारा संसार उसमें समा नहीं जाएगा, लेकिन अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा खेल बिगड़ेगा, बहुत चीजें नष्ट हो जाएंगी उससे, और बरसात भी बहुत हैवी होंगी। तो इसमें सारे कार्य होने हैं, जो गंदगी यहाँ होगी बरसात उसको सफाई कर देगी, बहा के ले जाएगी पानी सागर में, जो अर्थक्वेक्स होंगी उसमें भी बहुत चीजें पॉजिटिव होंगी और बहुत बड़ी चीजें तो नेगेटिव होनी है, और सागर जब आएगा धरती पर तो सागर के हीरे मोती भारत की भूमि पर बिखरे पड़े होंगे, धीरे से सागर पीछे हट जाएगा फिर
जी जी।
और
लेकिन हीरे मोती तो आएंगे, लेकिन ये चैतन्य हीरे तो चले
जाएंगे, चैतन्य हीरे सबको जाना ही है ना, तो
वो सोच के थोड़ा सा खतरनाक।
नहीं, हमें अब घर जाने की तैयारी रखनी चाहिए और हमें ये बाबा के महावाक्य रोज अपने को रिमाइंड करानी चाहिए कि 5,000 साल का खेल अब पूरा हो रहा है, अब सभी आत्माओं को संपन्न बनकर घर वापस चलना, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, कोई किसी कारण से जाएगा कोई किसी कारण से जाएगा, लेकिन जो महान योगी हैं, हैं ही 108 तो महान योगी होते हैं, उनमें से बहुत सारी आत्माएं उस टाइम प्रकृति को शांत करेंगी, उस टाइम मनुष्यों को भिन्न भिन्न तरह की मदद करेंगी, देह छोड़ने में मदद करना भी बहुत बड़ी मदद होगी। मान लो बिल्डिंग गिर जाती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो गिर गई और 1,000 लोग उसमें दब गए हैं, अब वो सभी मरेंगे तो नहीं, किसी का सिर फूट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई हैं, लहू बह रहा, कोई वहां उनको पूछने वाला नहीं, प्यास लगी है पानी देने वाला नहीं, ऐसे में उन्हें सकाश देकर देहों से मुक्त करना, ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी। तो इस तरह भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं उस टाइम भी चलती रहेंगी आत्माओं को मुक्त करने की।
जी, अगला प्रश्न ये कहते हैं कि अंत में बाबा ने कहा है चारों ओर हाहाकार होगा, तो बाबा तुम बच्चों को बहलाएंगे और साक्षात्कार कराएंगे। अच्छे पुरुषार्थियों को तो अच्छे साक्षात्कार होंगे ही, लेकिन गृहस्थ में रहते हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र नहीं हो पाता, तो क्या बाबा हमें भी बहलाएंगे, हमें भी साक्षात्कार कराएंगे?
बहलाएगा तो जरूर, अगर उससे नाता जुड़ा होगा तो। और इस पे डिपेंड करता है पास्ट में किसने कितनी भक्ति की है, भगवान से कितना प्यार किया है, या किसका साक्षात्कार करने की मन में इच्छा रही है, उस पे डिपेंड करेगा कि बाबा उन्हें क्या अनुभव कराता है। लेकिन गृहस्थी ये कह के छूट नहीं जाए कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ अच्छा न होने से आपको माफी नहीं मिलेगी। आप ये कह दें हम तो ग्रस्त में थे, बहुत बिजी थे, और हे धर्मराज हमें सजा न देना हमारे कर्मों की, इससे तो काम नहीं चलेगा, जज ऐसा तो नहीं कर सकते। तो अपने पुरुषार्थ को सभी ग्रस्त में रहने वालों को तेज करना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो कर नहीं सकते, ये तो उन्होंने मान लिया है कि हम ग्रस्त में है। क्यों मान लिया हम ग्रस्त में है? कहो ना हम ग्रस्त आश्रम में है, हमारा ग्रस्त आश्रम है, हम भगवान के बच्चे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, अपनी दिनचर्या को सेट करो। अनेक गृहस्थी माताएं और भाई बहुत उड़ान भर रहे हैं।
जी जी जी, बाबा तो कहते हैं जो बांधेलियां हैं उनमें तो तड़प वाली चीज होती है, तो यदि गृहस्थ में है भले बंधन में हो तो भी एक तड़पन की स्मृति हो सकती है। 1998 में बाबा ने कहा था कि अभी टू लेट की घंटी बजी नहीं है, बजने वाली है, अचानक ऑर्डर होगा कि टू लेट। ये हम पहले से सुनते आ रहे हैं व्रता जी कि ये टू लेट का बोर्ड लगेगा, तो ये टू लेट का बोर्ड क्या है, उसका उसकी क्या निशानी होगी कि हाँ ये बोर्ड लग गया भाई?
अब देखिए, एक तो टू लेट हो गया बाबा के आने में, पूरा हो गया वो, अब जो आने वाले थे मिलने उनके लिए टू लेट हो गया।
जी,
दूसरा है मालाएं कुछ बन रही हैं, उसमें बहुतों के लिए टू लेट हो जाएगा, जैसे आठ की माला है, अब कोई कहे अब हम आठ की माला का पुरुषार्थ करें, वो तो केवल कल्पना होगी, वो टू लेट हो गया है। लेकिन 108 की माला में आने का पुरुषार्थ किया जा सकता है, लास्ट के कुछ नंबर खाली रहे जाए रखे गए हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे पुरुषार्थ हैं, देखिए हमें जो संस्कार बदलने की बात है, संस्कार दो चार दिन में दो चार सालों में भी नहीं बदले जाते। मान लो प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का संस्कार हमें बदलना है, किसी में फीलिंग का संस्कार, किसी में जिद का संस्कार है, किसी में मूड ऑफ करने का संस्कार है, किसी में छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार है, चिंता करने का संस्कार है, मोह का संस्कार है, इसको दो चार साल में भी नहीं बदला जा सकता। तो जो लोग लेट ज्ञान में आ रहे हैं उनके लिए कहा जाएगा अब ये संस्कार पूरी तरह बदल जाएं, इसके लिए तो आप टू लेट हो गए। लेकिन उनमें से भी कुछ अच्छी आत्माएं जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगी, दो चार पांच साल में भी अपने संस्कारों को बदल पाएंगे।
जी जी जी, मतलब इस हिसाब से ये टू लेट, मतलब होता ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बोर्ड लगने वाला है। जी जी,
हो ही रहा है,
जो आपने कहा
टू लेट का बोर्ड लग चुका है, और लेट टू मच लेट होता जा रहा है।
जी जी, इसलिए आपने कहा कि एक मिनट भी एक वर्ष के तुल्य मान करके अब हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए।
मैं ये सोचता हूँ जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं,
जी,
जो लोग सवेरे भी नहीं उठते हैं, जो ग्रस्त की बात कही, अपने ग्रस्त में टू मच इन्वॉल्व हो गए, धन के पीछे भटक रहे हैं, अनेक समस्याएं उन्होंने क्रिएट भी कर ली हैं,
जी
क्रिएट कर ली हैं, समस्याएं थी नहीं, क्रिएट कर ली। जैसे किसी ने सोचा अभी लॉकडाउन का समय है और लोन भी आराम से मिल रहा है, ये हट जाएगा और फैक्ट्री लगा लेते हैं, 50 करोड़ लोन ले लिया और अब कुछ भी नहीं हो रहा, फंस गए। देखो मजे से जी रहे थे, अच्छा धन संपदा थी, खूब अच्छे परिवार थे, अब किसी को नींद ही नहीं आती, अब क्या करें, कुछ तो हो नहीं रहा। तो ऐसे बहुत लोगों ने अपने को उलझा लिया है लोभ लालच में। ठीक है, कामकाज को बढ़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे लोभ लालच बहुत ज्यादा, हम भी अंबानी बन जाएं, हम भी रतन टाटा बन जाएं, तो इसमें क्या हुआ है कि जो ऐसे उलझ गए हैं अब उनकी बुद्धि भी इतनी भटक जाती है कि ना तो वो स्थिर हो पाती, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात हमें समझ लेनी चाहिए, अगर हम संसार की प्राप्तियों के पीछे भाग रहे हैं तो ईश्वरीय प्राप्तियों का स्वाद नहीं चख सकेंगे।
जी जी जी, वैसे भी पेट को तो दो रोटी ही चाहिए जो बाबा कहते हैं, तो जितनी आवश्यकता है उतना रख के अब भविष्य का और पूरे कल्प की हमें तैयारी करनी चाहिए। बुद्धिमत्ता तो इसी में है। आपने एक संस्कार की बात कही प्राता जी, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है कि बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुक्त करना है, जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था उनको भी ये बीमारी जैसे इमर्ज हो जाएगी, तो फिर ऐसे समय पे क्या किया जाए, क्योंकि वो तो अचानक इमर्ज हो गए, चाहे वो काम विकार है चाहे और कोई संस्कार।
इसमें यही है, मैं काम वासना की बात लेता हूँ, मान लो देह छोड़ने का समय आ गया है मनुष्य का और उसमें वो वासनाएं थोड़ी थोड़ी जागृत हो रही है, तो कलयुग के चारों ओर माहौल में जो वासना के वाइब्रेशंस हैं वो जैसे आग का काम करेंगे, हवा का काम, जैसे छोटी सी चिंगारी हो ना, तेज हवा चल जाए और आग भड़क उठे, ऐसा काम करेंगे। और उस टाइम उनकी मनोस्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो किसी को बता सके, कोई उनसे पुरुषार्थ कर सके, करा सके, कोई उनके मन को हल्का कर सके। अब वो उन्हीं विचारों में वही सीन देखते देखते शरीर छोड़ेंगे, इसलिए उनकी दुर्गति हो जाएगी।
जी जी जी,
इसलिए लंबे समय से
अभ्यास,
हमें इन धारणाओं को अपनाने का अभ्यास करना
वही जो हम चलाते रहते हैं कि चलता है ना, बाद में कर लेंगे, अंत में कर लेंगे, तो ये शायद हमारे लिए सबसे बड़ी
भूल है, क्योंकि अंत में वो सब चीज हमारे सामने आ जाएंगी जो लंबे समय से हमने अपने अंदर संजो कर रखी हुई हैं। मान लो हमने दो चार लोगों को सताया भी है ना, अब वो एंड में उनकी आवाजें आने लगेंगी और हम इतने परेशान होंगे उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे।
जी जी,
ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी, हमें चिंता करने की आदत पड़ गई है, अब हमें लग रहा है हमें जाना है, तो बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, धंधों की चिंता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम उन सब चीजों से अपने को डिटैच कर ही नहीं पाएंगे।
जी,
इसलिए पहले ही जीते जी अपने को डिटैच करना, अपनी पवित्रता पर बहुत ध्यान देना, पुण्य कर्मों का खाता बढ़ा देना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा ने ये बात कही हुई है यमदूतों के बारे में कि जो यमदूतों की चर्चा है ना, वो यमदूत और कुछ नहीं, मनुष्य के पाप कर्म ही उनको यमदूत के रूप में दिखाई देने लगेंगे।
जी 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 जी, तो ये चीज हम वर्तमान से ही करें, जैसे वो फाइनल पेपर देने से पहले बच्चा सारे साल पढ़ता है, ऐसा नहीं कि वो लास्ट में जाकर के एग्जाम दे देता है, तो हमें भी समझने की जरूरत है कि इन सब चीजों पे सूक्ष्मता से ध्यान दें। प्रति जी, एक बात बाबा कहते हैं कि जो आदि सो अंत में होगा, तो इसका मतलब जैसे 14 साल तपस्या आदि में हुई थी, तो क्या हमें भी 14 साल तपस्या के लिए मिलेगा? और पहले तो वातावरण बहुत शांत था, वो अंत में तो अशांत रहेगा, तो इसका भाव क्या है आदि सो अंत का?
14 साल तपस्या की बात है, और उस टाइम भी 14 साल तपस्या सबने थोड़ा ही की, बहुत थोड़े लोगों ने की थी, और वो भी तपस्या योग की तो थी नहीं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की थी। अब हमारे सामने बहुत स्पष्ट ज्ञान है और तपस्या करने वाले 14 साल की इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो तो चालू है उनका, तो वो तो अब से ही शुरू कर रहे हैं, अंत वो सोच रहे अंत अभी और आगे आएगा, उन्हें दिखाई दे रहा है कि बिगनिंग ऑफ द एंड शुरू हो गया है। इसलिए जो आदि में हुआ वो अंत में होगा, उसका अर्थ है आदि में बाबा ने साक्षात्कार सबको बहुत कराए थे, सामने बैठ जाते थे, कोई श्री कृष्ण देख रहा है, कोई श्री राम देख रहा है, किसी को देवी दिखाई दे रही है, कोई स्वर्ग में घूम रहा है,
मतलब ऐसे बहलाते थे बाबा।
वो खेल अंत में, यानी जब बहुत महाविनाश होगा और दुख भरे सीन चारों ओर होंगे, तो ये टीवी आदि बंद हो जाएंगे ताकि मनुष्य न देखे न ज्यादा सुने, और साक्षात्कारों की धूम रहेगी। ये है आदि सो अंत बराबर।
जी जी, कई लोग इस रूप में भी लेते हैं कि जैसे आदि में बेगरी पार्ट हुआ वैसे अंत में भी बेगरी पार्ट होगा, जैसे आदि में कई झड़ गए वैसे अंत में भी झड़ जाएंगे।
नहीं, झड़ने का काम तो चलता ही रहता है, अब भी झड़ रहे, बहुत कोरोना में भी झड़ रहे हैं, और 2000 में भी बहुत झड़ गए थे, और झड़ते तो जाएंगे पत्ते, ये तो जैसे पतझड़ चलती रहती है ना पेड़ों में, और तीन तीन चार चार मास के बाद
पत्ते
चलते रहेगी, नहीं निकलेंगे, पुराने झड़ जाएंगे, ये चलता रहता है खेल। इसमें क्या है कि जिसका जितना भाग्य है कल पहले का, उतना भाग्य लेकर वो आत्मा चलती बनती है। फिर कोई कितना भी समझाए उनकी समझ में नहीं
आता। जैसे बेगरी पार्ट एक निश्चय की परीक्षा थी, तो वैसे ही क्या बेगरी पार्ट या फिर कोई और निश्चय की परीक्षा होगी जो बाबा बच्चों से लेंगे कि हाँ जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है वही रह पाएंगे, कोई ऐसा स्वरूप आपके
इस ड्रामा में? एक चीज दोबारा उस तरह रिपीट नहीं होती है, वो भी एक परीक्षा थी। बाबा को पक्के आत्माओं को भेजना था सेवाओं में, और कच्चों को वापस भेज देना था कलयुग में, क्योंकि कच्चों की उसको जरूरत नहीं थी। अब भिन्न भिन्न तरह की परीक्षाएं आएंगी। अब परीक्षाओं का रूप तो बहुत भयानक होगा, क्योंकि इन परीक्षाओं में तो महाविनाश भी समाया होगा ना। कहीं प्रकृति के प्रकोप होंगे, तो कहीं जैसी भयानक बीमारी अब चल रही है और ज्यादा भयानक बीमारी होगी। अब तो केवल कोविड का नाम हो गया, लेकिन कैंसर भी कोई कम रूप नहीं लिए हुए,
बल्कि उससे भी बहुत मृत्यु होती है,
ज्यादा हो रहा है। मानसिक रोग अब से दोगुने हो जाएंगे एक साल में ही, क्योंकि जो कोविड है उसकी यही गिफ्ट होगी मनुष्य को। मानसिक रोगों से लोग बहुत पीड़ित होंगे। कल एक समाचार था ना, एक भाई पड़ोस की किसी लेडी को कोविड हो गया, उसको हॉस्पिटल में छोड़ने गया। बेचारा बड़ा दयावान है, अपनी गाड़ी लेके उसकी सेवा भाव से उसको वहां छोड़ने गया। हॉस्पिटल में गया तो उसने सीन देखे हॉस्पिटल के, मुर्दे ही मुर्दे और क्या हाल, और आते उसको डिप्रेशन हो गया, मानसिक रोगी वो बन गया। तो ये बेचारे परेशान के देगा, सेवा भाव किसे गए और क्या लेकर आ गए हैं। तो मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये भिन्न भिन्न तरह की परीक्षाएं आएंगी। मौतें तो एक चीज है
जी,
परीक्षाओं के तो बाबा ने 8 रूप गिनाए हैं अपनी मुरलियों में। मान लो घर से लोग बाहर गए हैं, अब ये पता नहीं चलेगा कि आएंगे या नहीं, लेकिन अगर शिव बाबा पर विश्वास होगा, अगर हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ होगी, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता जाएगा। वही बिल्ली के बच्चों की जो बात है
जी, जी।
वो हमें अनुभव होगा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो सबको प्राप्त होनी है, जिसको शरीर है उसको शरीर छूटना ही है, इसलिए उसको हम केंद्र बिंदु बना के न चलें कि ये बाबा की मदद नहीं थी।
बिल्कुल, मतलब अपने आप को थोड़ा सा एक स्थिति को भी और साथ ही साथ बाबा के ऊपर विश्वास को भी
और विचारों को भी महान बनाएं।
जी, जी
बाबा की मदद, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ रिपीट कर रहा हूँ, देह आराम से छूटे, देह छूटते हुए मनो स्थिति बहुत सुंदर रहे, सबसे बड़ी मदद ये होगी।
बिल्कुल बिल्कुल प्रति जी, जैसे ये बात चल रही है उसी में से एक प्रश्न आया था कि अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए कितने साल बचे हैं, जिससे हम अपनी संपन्न संपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के लिए अपनी प्लानिंग कर लें।
जो आज अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है वो कल भी करेगा, जो 2021 में अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है वो 22 में भी करेगा। इसलिए कितने साल बचे हैं ये इंतजार करने की जरूरत नहीं। देह का क्या भरोसा, कोविड नंबर लगा दे और कुछ ही नंबर लगा दे, आगे न जाने मौत के कितने सीन आएंगे, कितने रूप आएंगे। कोविड तो एक रूप है, और मैं पिछले साल भी कहता था कि ऐसा सीन आ रहा है कि लोग कहेंगे यार वो कोरोना ही अच्छा था, अभी देखो उससे भयानक स्ट्रेन आ गया। अब कहते हैं पिछले साल ही ठीक थे, थोड़ी बहुत दिन में खत्म हो गया था खेल, तीसरा ऐसा आएगा कहेंगे यही ठीक था। इसलिए पुरुषार्थ की प्लानिंग तो हर रोज की होनी चाहिए। पुरुषार्थ की प्लानिंग तो मैं और ज्यादा कहूँ तो हर 3-3 मास की होनी चाहिए। उससे ज्यादा जो प्लानिंग करेगा वो कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छे पुरुषार्थियों को एवरीडे की प्लानिंग करनी चाहिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ की, और अच्छे पुरुषार्थियों को 3 मास की भी कर लेनी चाहिए।
बिल्कुल, मतलब इंतजार नहीं करना चाहिए। कई लोग इससे इंतजार में रहते हैं कि नहीं शायद स्थिति और सुधर जाए, अब शायद ठीक हो जाए, और शायद ऐसा होगा भी जो बाबा ने कहा है कि सुधरेगी फिर बिगड़ेगी। जैसे
सुधरेगी, मैं तो मुझे पहले से ही आभास था, एक बड़ा सीन आएगा फिर ठंडा होगा
जी,
फिर ब्राह्मणों में जागृति होगी, कुछ भाग जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे, और कुछ जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण है उनको लिफ्ट मिल जाएगी। फिर कुछ समय के बाद दूसरा बड़ा सीन आएगा भयानक, कुछ समय चलेगा फिर शांति होगी, फिर कुछ निकल जाएंगे और कुछ पुरुषार्थियों को लिफ्ट मिल जाएगी। ये खेल कम से कम 10 बार चलेगा इस सृष्टि पर 2030 तक। तो इसमें हमें हमेशा ही अच्छा पुरुषार्थ रखना चाहिए। और मैं एक बात जो अपने को समझा दी है बहुत ज्यादा, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करके चलना है। और अब इस सृष्टि पर वो नहीं होगा जो मनुष्यों की प्लानिंग होगी, वो होगा जो प्रभु प्लानिंग होगी।
जी जी, इसीलिए उसे सहज स्वीकार कर लें और बस उसे अर्पित करके चले। वो कहते हैं ना, प्रभु ने कहा है मां एकम शरणम व्रज, तो वही समय आ गया ऐसा लगता है।
खत्म। जी जी जी। और दूसरा ये कि उसकी प्लानिंग क्या है, उसको भी श्रेष्ठ योगी जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है वो समझ सकेंगे।
जी जी जी। ब्रदर जी, अगला है ये इनका प्रश्न है कि मुरली में इतनी सारी धारणाएं और बातें बाबा कहते हैं, इतनी सबको अपने जीवन में लाने के लिए तो ऐसा लगता है कि एक संगम युग हमें और चाहिए, तो सब कुछ थोड़े से टाइम में कैसे जीवन में आ जाए जो नए नए बाबा के बच्चे आए हैं। संभव
दो चार पांच बातों को आप लेकर चले। हमें योगयुक्त अच्छा होना है, उसमें स्वमान, पांच स्वरूपों का अभ्यास जो भी अच्छे। दूसरी धारणा पर ध्यान दे, प्योरिटी बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि प्योरिटी इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग में कह रहा हूँ, सुख शांति नहीं, तो प्योरिटी जितनी बढ़ेगी जीवन में सरलता आएगी, खुशी बढ़ेगी, संतुष्टि बढ़ेगी। और ऐसे ही ध्यान दे बहुत ज्यादा संतुष्टता पर, निरहंकारी स्थिति पर, ताकि मैंपन हमारा पूरी तरह छूटता चले। हम धारणाओं पे ध्यान दें, हमारा चित्त बहुत शीतल नम्र एकदम सॉफ्ट, हमारा स्वभाव सुभावनाओं से भरा हुआ रहे, और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें। भाई इतनी सी बातें लेंगे तो इनके पीछे सारी धारणाएं आती जाएंगी।
जी जी जी, ये सुंदर सार गर्भित बातें आपने सबके सम्मुख रख दी हैं, तो इन पे ही फोकस करें, सारी चीजों का सार आ जाएगा। ये अगला प्रश्न ये पूछते हैं, वर्तमान समय हम मनसा सेवा ज्यादा करें या स्व पुरुषार्थ पे ध्यान?
नहीं, स्व पुरुषार्थ और मनसा सेवा दोनों एक सी है। अगर हम बहुत अच्छा योगयुक्त रहते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को बल देते ही रहेंगे, हम लाइट हाउस बन जाते हैं। तो हमारा योग तो विश्व कल्याण के लिए है, लेकिन हमें अपने कुछ अच्छे पुरुषार्थ पे ध्यान देना चाहिए, जैसे हमारी योग की शक्ति व्यर्थ चिंतन में नष्ट न हो रही हो, हमारी योग की शक्ति व्यर्थ की इच्छाओं में समाप्त न हो रही हो, हम कहीं टकराव में आकर अपने जीवन की ब्यूटी को नष्ट न कर रहे हूँ। इन सब पुरुषार्थ की बातों पे ध्यान देना चाहिए। बाकी योग जितना अच्छा होगा उतने विश्व की सेवा भी होगी, और परपजली भी विश्व को सकाश देने के लिए योग अभ्यास करना चाहिए।
जी, शास्त्रों में ये बात आई है और हम ये कहते हैं कि कलयुग समाप्त हो रहे, तो शास्त्रों की एक बात है कि जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा तो कलयुग के लास्ट 16 ईयर में कल्कि अवतार धरती पर आएगा, तो ये लास्ट के 16 ईयर्स कौन से हैं जिसमें कल्कि अवतार जी आएंगे?
ये तो भिन्न भिन्न बातें लोगों ने कही हैं। बाकी कलयुग के अंत में स्वयं जो सुप्रीम सत्ता है वो अवतरित होकर युग बदलने का कार्य करती है, मनुष्य को पावन बनाने का काम करते हैं परमपिता, जो उन्होंने खोया है वो पुनः देते हैं। तो 16 साल नहीं, 100 साल पहले होता है ये काम।
जी 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 जी। गीता का भगवान प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता होगी, ये बाबा ने कहा है, लेकिन अभी गीता के भगवान की तो कोई चर्चा ही नहीं।
हाँ, अभी क्या है कि गीता पढ़ते भी लोग नहीं है, दुनिया में भी गीता को विस्मृत कर दिया है लोगों ने। ये वो समय था जब बाबा सेवाओं के लिए बहुत उमंग भरते थे सब में, और ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी, क्योंकि विद्वान सन्यासी साधु संत भी हमारे कॉन्टेक्ट में बहुत थे। और राज इसके पीछे ये है कि अगर मनुष्य को इस समझ में आ जाए कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, निराकार परमात्मा है, तो निराकार से योग लगेगा, क्योंकि गीता में बार बार कहा है बुद्धि मेरे से लगाओ, मुझे याद करो, अपना सब कुछ मुझको अर्पित कर दो, तो सर्वशक्तिवान से योग लगने से आत्मा पावन बन जाएगी। श्री कृष्ण से योग लगाना ठीक है, लेकिन आत्मा पावन तो नहीं बनेगी। लेकिन अब वो लहर नहीं है, अब दूसरी लहरें चल रही हैं। बाबा अपने बच्चों में उमंग उत्साह भरते थे, वह जी सुप्रीम टीचर बहुत अपने स्टूडेंट्स को एनर्जेटिक रखते थे, सदा दौड़ाते भगाते रहते थे, ठंडा नहीं होने देते थे।
बाबा खुद भी नहीं बैठते थे, और मुझे एक प्रसंग याद आता है, वो बाबा कहते थे कि जब तक सतयुग की स्थापना नहीं हो जाती तुमको आराम नहीं करना।
बाबा उमंग बढ़ाते थे सबका।
जी जी। प्रदीप जी, एक बात और आई है इसमें कि विनाश ज्वाला बाबा कहते हैं कि यज्ञ से निकलेगी। तो ये विनाश ज्वाला यज्ञ से निकलने, मधुबन से निकलने की बात है क्या? और यदि हाँ तो इसका स्वरूप क्या होगा?
मधुबन यज्ञ नहीं है, मधुबन तो मेन है। सारा जो बाबा का परिवार है, ईश्वरीय परिवार, जितने भी बाबा के सेवा केंद्र हैं, ये सब यज्ञ कहलाते हैं। और यज्ञ में जब बहुत पावरफुल तपस्या चलेगी, अब जो चल रही उससे भी पावरफुल चलेगी, तो ये पावरफुल योग के वाइब्रेशंस प्रकृति में समाएंगे तो प्रकृति में विस्फोट होंगे, क्योंकि इधर प्योरिटी जाएगी, उधर से प्रकृति की इम्प्योरिटी बाहर निकलेगी, तो बड़े विस्फोट दिखाई देंगे। एक सीन यह आएगा, दूसरा जब यहाँ बहुत अच्छी योग तपस्या चलेगी तो विनाशकारियों को भी उससे विनाश की प्रेरणा प्राप्त होगी, क्योंकि एटम बॉम्ब्स तैयार तो किए हुए लोगों ने, तो एक प्रकृति पर इसका इफेक्ट होगा। प्रकृति में तो बहुत सारी चीजें हैं, तूफान भी आएंगे, अर्थक्वेक्स भी होंगी, हैवी रेन्स भी होंगी, तो महामारी तो प्रकृति लाएगी ना। और फिर विनाशकारी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो निमित्त हैं इसके, उनको तेज प्रेरणा होगी, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि वो अपने को रोक नहीं पाएंगे और वो इस का बटन दबवाएंगे।
जी जी, इन्होंने आगे ब्रैकेट में भी लिखा था कि क्या यज्ञ में पहले युद्ध होगा, उसके बाद वो युद्ध बाहर होगा?
नहीं, यज्ञ में युद्ध नहीं होता कभी। यज्ञ में तो डे बाय डे गहन शांति होती जाएगी, जो थोड़ी बहुत टकराव करने वाले लोग भी हैं वो आउट ऑफ यज्ञ हो जाएंगे।
जी जी, बाबा ने तो कहा है कि मधुबन शीश महल
बन जाएगा, महान तीर्थ बनेगा।
जी जी, जहाँ सभी आत्माएं आना चाहेंगी और भगवान के एक बार दर्शन करना चाहेंगी। भ्राता जी, एक प्रश्न आया है इस विषय से, हल्का सा हटके है, कि हम इतना योग कर रहे हैं और लोग भी दिखाई देते हैं कितना योग तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उनमें परिवर्तन क्यों दिखाई नहीं देता? उनके संस्कार ज्यों के त्यों क्यों बने रहते हैं?
कईयों की ये बात देखने में आती है, हमने कईयों को देखा हमारे आस पास ही लोग, तो सवेरे 3 बजे उठ के बहुत अच्छी योग साधना करते हैं, लेकिन कोई एक संस्कार जीवन भर चलता आ रहा है, योग का असर तो उन पे हो रहा है, लेकिन कोई एक संस्कार चलता आ रहा है जीवन भर। अगर वो 30 साल से कर रहे हैं तो 30 साल से वो संस्कार भी साथ चल रहा है, तो लोग कहते हैं कैसा योगी है, योग तो बहुत करता है लेकिन परिवर्तन तो कुछ नहीं होता। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने कुछ संस्कारों को बदलने पर भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग चारों सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते उनकी ये स्थिति बनती है, इसलिए ज्ञान का बल, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमें किस किस चीज में चेंज लानी है अपने अंदर। अगर ज्ञान का चिंतन नहीं है तो हम योग पे तो ध्यान देंगे लेकिन अपनी उन कमजोरियों पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हम अपने को राइट मानते चलेंगे, भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, मैं चिड़चिड़ा होता हूँ क्या करूँ, लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, चिड़चिड़ापन आएगा ही ना, ऐसे संकल्प रहेंगे। इसलिए अगर ज्ञान का चिंतन होगा, कुधारणाओं पे भी ध्यान होगा, तो मनुष्य जल्दी अपने में परिवर्तन लाएगा। योग की शक्ति तो बहुत बड़ी है। फिर दूसरी बात यह कि कोई व्यक्ति 3 बजे उठ तो गया लेकिन उसका योग है कैसा, उसको योग में एकाग्रता है या नहीं, उसको योग की पावरफुल स्थितियों का अनुभव है या नहीं, वो 5 स्वरूपों के अभ्यास पे ध्यान देता है या नहीं, तो योग कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर योग अच्छा होता है तो देखो चेहरे में भी रौनक आ जाती है और जीवन बदलता ही है, विचार बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता एक अच्छा योगी वही संस्कार 50 साल लिए चल रहा हो, इसका अर्थ है कि उसका योग अभी अच्छा नहीं लगता है।
जी जी जी, मूल वतन में जाने से पहले सूक्ष्म वतन में जाएंगे, वहाँ सभी को आकार मिलना है, फिर अपने घर चलकर अपने राज्य में आएंगे, तो इस महावाक्य को थोड़ा स्पष्ट करें।
पहले सभी सूक्ष्म वतन, क्योंकि आत्माएं जब इस देह को छोड़ के जाती हैं तो सूक्ष्म शरीर सहित ही जाती हैं। हिसाब किताब तो एक्चुअली यही चुकते हो जाएंगे सबके, लेकिन सूक्ष्म शरीर लेकर अब जब वो सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे तो उनको आभास होगा ही सूक्ष्म शरीर है उनके पास।
मतलब वहाँ ये है बाबा का मावा कि वहाँ सभी को आकार मिलना है।
नहीं, आकार और कुछ नहीं, आकार तो उनके पास है सूक्ष्म शरीर का, और कुछ मिलना वहाँ नहीं है। वहाँ से वाया फिर वो सूक्ष्म शरीर वही उनका लोप हो जाएगा
जी,
जैसे वो ऊपर को उड़ेंगे और वो आत्माएं अपने धाम चली जाएंगी।
चली जाएंगी, अंत में तड़पती हुई आत्माएं एक सेकेंड भी नहीं रुकेंगे, हाहाकार कर देंगे। अब अंतिम सीजन की तैयारी करो, ये बाबा का महावाक्य है। क्या तैयारी उस हाहाकार में, एक सेकेंड भी वो शायद नहीं रुकेंगे इतनी तड़प रही होंगी। तो
वही कि जब मनुष्य का अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता तो छोटी भी बात उसे सहन करना बहुत भारी हो जाता है। तो अगर पुरुषार्थ अच्छा नहीं होगा तो छोटी भी बात मनुष्य आत्मा को तड़फा देगी, बहुत पेनफुल होगी, बहुत पीड़ित करेगी। लेकिन अगर अच्छा अभ्यास होगा, देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस होगी, तो शरीर की बीमारियां बहुत हल्की लगेंगी, उतना पीड़ित नहीं करेंगी जितना उनको करती हैं जो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। इसलिए तैयारी करनी है बॉडी लेस होने की, भिन्न भिन्न तरह के योग के अभ्यास करने की, अपने मनोबल को बढ़ाने की, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बहुत जमा करने की।
जी 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 जी, एक अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ माता जी। वैसे तो और कई प्रश्न हैं, लेकिन सबके सार रूप आ गए हैं। बाबा ने कहा जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, तो संगम पर ही राजधानी स्थापन कैसे होगी और कहाँ होगी? क्योंकि दोनों बातें हैं कि राजधानी स्थापन होगी तब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, तो इसे स्पष्ट करें।
राजधानी को यहाँ हमें नहीं मिल जाएगी, जैसा कई लोग समझते हैं कि राज दे दिया जाएगा यहीं, यहाँ राज नहीं मिलेगा। सूक्ष्म रूप से हमारा राज्य तैयार हो गया, राजा रानी तैयार हो गए, प्रजा तैयार हो गई, देवकुल की आत्माएं तैयार हो गई, और जैसे ही सतयुग आएगा उसके दिन शुरू होंगे तो ये धीरे से ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी कर्मातीत और युद्ध, इसका संबंध है, बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं महाभारत युद्ध तभी होगा जब तुम कर्मातीत हो जाओगे। तो कर्मातीत सब तो उस तरह होंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हर व्यक्ति कर्मातीत, हर आत्मा कर्मातीत होगी तो युद्ध लगेगा, लोग कहेंगे हम तो होते ही नहीं, रोको युद्ध को, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जो मुख्य रतन है बाबा के
जी
108 कह लें और थोड़े आगे वाले, वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। और क्योंकि खेल पूरा हो गया, सच तो यही है कि 108 आत्माएं पूरी तरह तैयार होते ही खेल पूरा हुआ तो युद्ध प्रारंभ हो जाएगा।
जी जी जी, मतलब इसका भाव मतलब विनाश ज्वाला से है और युद्ध से है। हाँ। और राजधानी तो भविष्य की बात है। जी जी व्रत जी, अंत में, क्योंकि एक ऐसा दौर चल रहा है जबकि चारों ओर कहीं ना कहीं सबके मन में एक आशंका, अनिश्चितता या भय की स्थिति है, ब्राह्मण परिवार को, हमारे सभी भाई बहनों को क्या कहेंगे?
एक तो हमें अपने ज्ञान को और सूक्ष्म करना चाहिए, अपनी दृष्टि को, जिसको बाबा कहते त्रिकालदर्शी तुम्हें बनना है, जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका अगला परिणाम क्या है, अगले सीन कौन से हैं, इस दृष्टि से भी हमें नॉलेजफुल होना चाहिए। और केवल नॉलेजफुल होने से ही काम नहीं चलेगा, हमें पूरी तरह से अपने को डिटैच, निर्मोही बनाने का अभ्यास कर देना चाहिए। इस विश्व के नाटक को साक्षी होकर देखने का बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। निर्भयता को हमें बढ़ाना है और अपनी योग युक्त स्थिति को इतना अच्छा करना है ताकि हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को सुकून दे सकें, हमारे वाइब्रेशंस दूसरों का सहारा बन जाएं। मैं एक बात ऐड कर देना चाहता हूं, कि ये सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो मनुष्य के कर्मों के अनुसार हो रहा है, इसलिए होने दो, वो तो होना ही है क्योंकि सबके कर्म ही ऐसे हैं। नहीं, वो अपने कर्मों के अनुसार कष्ट पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार उनके कष्ट को निवारण करेंगे। जैसे डॉक्टर ये नहीं सोचता इसने ये खाया इसलिए बीमार हो गया, अब बीमार हो गया मुझे उसको ठीक करना है। तो संसार में जो कुछ भी होगा हमें अपने निरंतर वाइब्रेशंस देने हैं, संसार को मदद करनी है, क्योंकि हम पूर्वज हैं। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से कहूंगा, अब जो भी अलबेलापन रहा हो, कोई व्यर्थ में रहे हैं, कोई दूसरों को देखने में रहे हैं, जिसके अंदर इम्प्योरिटी रहती है, कोई मान शान धन के पीछे भटकते रहते हैं, इन सबको छोड़कर शांत हो जाएं, श्रेष्ठ स्वमान को जागृत करें, अपनी योग्युक्त स्थिति को बढ़ाएं, ताकि हम संसार के काम आ सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। सभी भाई बहने निश्चित रूप से आपके इस सुंदर प्रेरणा को अपने जीवन में लाएंगे, अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ करेंगे, ऐसी हमारी शुभ आश भी है और कामना भी है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रेरणा भ्राता जी के द्वारा हम सबको, और बाबा ने अपनी मुरलियों में तो पूरी तरह सब कुछ स्पष्ट कर ही दिया है कि अब क्या होना है, भविष्य में क्या होना है। अब जो करना है वो हमें करना है, क्योंकि हमारी स्थिति ही हमें इस योग्य बनाएगी कि हम कैसे अपने हिसाब किताबों को बहुत सहज रूप से पार करते हैं, और कैसे विश्व कल्याणकारी बाबा के साथ साथ विश्व कल्याण के अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हैं। क्योंकि बाबा जैसे दुख हरता सुख करता है, हम सबको भी वही पाठ प्ले करना है। जैसे बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, हम सबको भी वैसे ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करनी है, सबको सुकून देना है, सबका कल्याण करना है, सबका उद्धार करना है, क्योंकि हम ही पूर्वज हैं। तो बातें भले ही परिस्थितियां कैसी भी दिखाई दे रही हों, लेकिन हमारे लिए एक तैयारी की ओर बढ़ने का वक्त है। घर में आप सभी हैं, मैं यही कहूंगा कि घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, बाबा की याद में मस्त होंगे, और इसी की आवश्यकता है, क्योंकि अगले कुछ समय ये स्थितियां रहेंगी, उसके पश्चात तो स्थिति सामान्य होती चलेगी, लेकिन हम अपनी तैयारी भविष्य के लिए बहुत अच्छी करें। आपका होना बहुत जरूरी है, आपसे मिलना जरूरी भले ना हो, इसीलिए आप अपने घर में रहते हुए जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के, उनका सुंदर रूप से पालन करते चलें। बाबा ने तपस्या का समय दिया है, अपनी स्वउन्नति का समय दिया है, अपनी चेकिंग का समय दिया है, तो क्यों ना जो एक बड़ा पेपर हमारे सामने, एक ट्रेलर है, एक बड़ा पेपर जो आने वाला है, उसके लिए हम पूरी तरह अपने आप को तैयार कर लें, और बाबा की भी मदद को समझ पाएं, बाबा को समझ पाएं। और उससे भी बड़ी चीज मुझे ऐसा लगता है कि हम बाबा के मददगार बन पाएं, क्योंकि वो बाबा जो सारे संसार का उद्धार कल्याण करने वाले हैं, उन्हें भी तो ऐसे समय पे राइट हैंड्स की जरूरत है, अपने योग्य बच्चों की जरूरत है, जो पूरी तरह उसके लिए खाली हों, और जहां जहां दुख तकलीफ है वहां वहां बाबा अपने उन बच्चों को यूज कर पाए। तो आए अपने आप को पूरी तरह ऑफर करें, उसकी शरण में पहुंच जाएं, उसकी याद में मस्त रहें, ताकि वो जैसा चाहें वैसा हमसे सेवा ले पाए, और उनके साथ रहते हुए हमारी स्थिति तो वैसे भी सर्वोच्च हो जाएगी, एक कर्मातीत स्थिति की ओर बढ़ेगी। जैसे बाबा आज कह रहे थे कि तुम निरंतर योगी हो जाओ, कर्म योगी हो जाओ, यही तो बाबा की चाहना है। मैं यही चाहूंगा कि हम सब ऐसी एक श्रेष्ठ स्थिति की ओर बढ़ें, साक्षात्कार मूर्त बन जाएं, ताकि चारों ओर भले ही हाहाकार की स्थिति हो, लेकिन उसके साथ साथ जो जय जयकार की स्थिति है, उसके लिए धरने, उसके लिए मंच हम सब मिलकर तैयार करें। और अंततः आप देख रहे हैं, प्रश्नों में भी आपने सुना, हमारी बहुत सारी समर्पित बहनों ने, बहुत सारे समर्पित भाइयों ने, बहुत सारे बाबा के बच्चों ने देश में विदेश में अपने स्थूल देह का त्याग किया, अव्यक्त हुए हैं, तो हम सब उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अंत में। और साथ ही जो आत्माएं इससे पीड़ित हैं अभी कोरोना से, उनके परिवार वाले जो दुख और तकलीफ में हैं, जो क्वारंटीन में हैं, जो मेडिकल स्टाफ है जिन्हें भी इतना हैक्टिक वर्क करना पड़ रहा है, उन सबको भी हम सकाश देंगे। तो चलें सब मिलकर जो आत्माएं गई हैं उन्हें श्रद्धांजलि, और जो आत्माएं हैं उन सबको अपनी शक्तिशाली सकाश प्यारे बाबा की याद के साथ देंगे। ओम शांति।